नमामि स्वारं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्
Oh.
ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्तिषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते दे प्रणमामि हरिप्रिये हा देवि काकुभर गदगदयाद्यवाचा जाचे निपत्त भुवि दण्डवतोट भटर्ति अस्य प्रसादमबुधस्य जगत्पते हरिके तव गणी गणरंगे अंगश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरं जड्डञ्जागुदरोचि साङ्गपिदत्तङ्गपट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायेम् दामोदरं भक्त्याविहीनाय पराधलक्ष्यै चित्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो वैराग्यजुगभक्तिरसंप्रयत्ने अपायन्मानन भिक्षुमन्दं कृपां बुधिरिज परदुःखदुःखी सनातनस्तं प्रभुमाश्रयं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदन्तिका यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृते द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्मोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् तुष्णीं तवैवास्मि तवैवास्मि न तमस्वामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं न मां चरणन्ति किम्
शिशि भजन रहस्य हम लोग कल भजन राज्य के द्वितीय याम के संबंध में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की के इस द्वितीय याम साधन के संबंध में दो श्लोकों का अनुशीलन किया था। पहला याम हरि गुरु वैष्णव की कृपा से हमारे हृदय में श्रद्धा जो भक्ति लता का बीज है वो बपन हो जाए उसको लगाया जाए। नाम के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास, शास्त्रों के प्रति और वैष्णवों के प्रति, ये मोटा मोटी ये प्रथम याम है भजन राज्य का। और दूसरा याम में गुरु से दीक्षा और उनसे उनकी विश्रम्भर रूप में सेवा और उसके द्वारा सद्धर्म की शिक्षा, कैसे भजन करना चाहिए, हमारा भजनीय वस्तु क्या है, ये सब चीज़। और इसके साथ साथ में अंधकार को दूर करना, प्रातःकाल अब सूर्य उदित होने को हैं, अथवा यहाँ पर हमारे जो आराध्य हैं उनका जो साधन भजन है उसमें अब कुछ प्रकाश आने वाला है। ये द्वितीय जाम प्रातःकाल, इसमें से उन्होंने अनर्थ के लिए पहले बतलाया स्वरूप भ्रम, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य और अपराध, जिसमें हम लोग पहला स्वरूप भ्रम का हम लोग विचार कर चुके हैं। स्वस्वरूप, परस्वरूप माने भगवत स्वरूप, साध्य और साधन, इनके विषय में जो भ्रम है ये दूर हो करके इनके प्रति निष्ठा है। अभी अनर्थ बहुत हैं, अभी रात अभी बीत रही है, केवल अभी अनर्थ हैं। इसके बाद में कल हमने और बताया असत तृष्णाएँ, भगवान के भजन के अतिरिक्त दूसरी प्रकार की जितनी भी वासनाएँ हैं वो सब तृष्णाएँ हैं, उनको दूर करना चाहिए। असत तृष्णा चाहिए भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति, विशेष करके भगवान नाम रूप गुण लीला कथा के श्रवण में, कीर्तन में और स्मरण में। विशेष करके पांच जो बतलाए गए हैं साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वार्षिक मुक्ति श्रद्धा, इसमें तृष्णा होनी चाहिए, प्यास और भूख लगनी चाहिए जैसे। और इसके अतिरिक्त जितनी चीजें हैं वो सब क्रमशः तृष्णाएं दूर हो जाए। उन चारों में बतलाया किसी भी लौकिक विषय में जितनी प्रकार की आकांक्षा हो सकती है वो सब एषणा कहलाती है। एषणा माने अभिलाषा, किसी प्रकार की संसारी कोई भी चीज, विशेष करके कनक कामिनी और प्रतिष्ठा, इसके अतिरिक्त कुटी नाटी, जीव हिंसा इत्यादि, ये सब बतलाया है। कुटी नाटी माने क्या, जितने प्रकार के कु हैं और जितने प्रकार के निषेधात्मक ना हैं उन सबको दूर करना है, उसमें से कुसंग इत्यादि है, कदाचार है, ये सब जितने इस क्या
कृष्णा भक्त एक साधु,
कृष्णा भक्त एक साधु, असत संग त्याग यही वैष्णव आचार इत्यादि है। तो ये सब संसारी कोई भी कृष्ण की भक्ति की वृद्धि हो, इसके अतिरिक्त जितने प्रकार की अभिलाषा हो उन सबको दूर करना है। इसमें निद्रा आलस्य प्रमाद इत्यादि भी सब है, नहीं तो ये सब तो छोड़ दिया और दिन रात सोएंगे, हरि कथा के समय में भी सोएंगे, आलस्य प्रमाद इत्यादि रहेगा तो वो भी इसमें शामिल कर लिया जाए, तभी भक्ति नहीं होगी। दूसरा पारत्रिक विषय में, पारत्रिक माने स्वर्ग है मोक्ष तक, ये सब इच्छा दूर करनी, योग विभूति इत्यादि जितने प्रकार की चीजें हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि इत्यादि, ये सब चीजों को दूर करना है। मोक्ष की कामना इसके लिए संपूर्ण से विपरीत है, इसको छोड़ना पड़ेगा। अब कहते हैं अपराध, चार प्रकार के अपराध इन्होंने बतलाया, कृष्ण नाम स्वरूपेशु, चलो जैसे उन्होंने लिखा है। कृष्ण नाम का जो स्वरूप है अर्थात नामापराध दूर करना चाहिए। नामापराध 10 प्रकार के हैं, ये सभी लोग जानते हैं, इसलिए विशेष इसके संबंध में नहीं बतला, किंतु सबके ऊपर में है। नामापराध के सबके ऊपर में क्या है? स्वतान। गुरु जी के प्रति अपराध होना जरा कम ही लोग करेंगे, किंतु साधु को लोग पहचानते नहीं है, संतों को पहचानते नहीं है। बहुत से ऐसे संत हैं निराभिमानी, निष्किंचन, अकिंचन, जो अपनी प्रतिष्ठा इत्यादि कुछ भी नहीं चाहते, उनको समझ लेना बड़ा भारी कठिन है, बहुत कठिन है। जब तक कि शुद्ध अपने आप वैष्णव नहीं हुआ जाए, उनकी कहीं कर्कशता देख करके, स्वभाव का कुछ वैसा देख करके, उनकी छोटी छोटी बातों में इतने दार्शनिक भाव रहते हैं, उनके वेशभूषा भी ऐसे रहते हैं, जिनको समझना आप देवताओं के लिए भी कठिन है, बड़े बड़े वैष्णवों के लिए भी बड़ा भारी कठिन है। और कहा गया है कि वैष्णवों का तारतम्य समझ करके, वैष्णवों को पहचान करके तब सेवा करो। चिनिया लईबा आदर करीबा, आदर करेंगे तब, और नहीं तो अवैष्णव को वैष्णव, वैष्णव को अवैष्णव हो जाएगा। तो ये नामापराध, कृष्ण स्वरूप के अपराध के प्रति अपराध, अर्थात भगवान के शिव, भगवान से कभी कोई संबंध नहीं, इसलिए कृष्ण के प्रति अपराध होने का कोई भी संभावना नहीं। शिव विग्रह ही कृष्ण है, इसलिए विग्रह की सेवा इत्यादि में जो अपराध हैं वो सब अपराध। एक आदमी के लिए, कनिष्ठ अधिकारी के लिए अपराध कुछ हो सकता है, किंतु वही काम यदि उन्नत अधिकारी वैष्णव है तो उनके लिए अपराध नहीं भी हो सकता है, तो इसका विचार कौन करेगा? सुनते हैं कि कोई संत गए मक्का में, तो वो मंदिर उसमें जो मस्जिद है उसी के तरफ में पैर रख करके सो गए, तो मुल्ला जी आए, उन्होंने कहा अरे तो मस्जिद के की तरफ में पैर रख करके सो रहा है। तो उन्होंने कहा जी एक बात आप कीजिए, जिधर मस्जिद और अल्लाह जी खुदा जी न हो उस तरफ हमारा पैर कर दीजिए। तो वो चिंता करने लगे, जैसे इसके तरफ मस्जिद की तरफ में तो अल्लाह है, आ तो अल्लाह इधर में नहीं है, पूरब की तरफ करने लगे। तो उन्होंने पूछा जी भाई अब इधर में अल्लाह तो नहीं है ना? तो अल्लाह कहाँ नहीं है? अंत में उन महात्मा को छोड़ करके चले गए। हम लोगों के लिए तो अपराध हो जाएगा, किंतु ऐसे महात्माओं के संबंध में हम अपनी धारणा के अनुसार में अपनी भावना उन पर नहीं ला दें, उन पर न चलाएं। वो इस सबके शास्त्र के अंकुश से कुछ ऊंचे हैं, अनुग्रह करके उनकी सब बातें विधियों के अनुकूल होती है, विधि के प्रतिकूल नहीं होती, किंतु किसी भाव अवस्था में रहने पर ऐसा संभव हो सकता है। इसलिए खूब समझ बुझ करके वैष्णव अपराध न हो, सेवा अपराध न हो, ना? भगवान से लड़ना झगड़ना उचित नहीं, किंतु ऐसा कोई भक्त हो उन्नत कोटि का जो उनसे लड़ झगड़ रहा हो, तो हम कनिष्ठ अधिकारी उसमें अपराध कर बैठे। वो बंसीदास बाबा जी महाराज, तोतापुरी इत्यादि जी, गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज अपने आराध्य के साथ में लड़ाई झगड़ा कर लेते, उनको समझना बड़ा भारी कठिन। इसलिए ये सब देख करके, किंतु हम लोगों के लिए अभी कनिष्ठ अधिकारी जिनका भी अंधकार दूर नहीं हुआ है, शास्त्र के विधि के अनुसार में नामापराध, सेवापराध और उनके भक्तों के प्रति अपराध, और चित्तगण जीवों के प्रति अपराध, ये चार प्रकार के। चित्तगण जीव माने क्या? साधारण जितने जीव हैं, इसीलिए वो कहीं कहा गया शिव विग्रह का पूजा करते हैं, हैं? क्या श्लोक? हर चाहे हमें हरे नारे, जो पूजा तो करते हैं सब जगह और जल में तीर्थ बुद्धि करते हैं, कुनपे तिधातु के भौम इज्जति सलिले न करहि जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोफल। शिव विग्रह में तो करते हैं ना, किंतु जनेषु माने भगवान के जो प्रियजन है उनमें अपनत्व का ममत्व का बोध नहीं रखते। शिव विग्रह के लिए कहेंगे नहीं, कोई भक्त है पुजारी लोग देखते हैं ना क्या करते हैं, पुजारी लोग पान खा रहे हैं, कोई सदाचार उनों का भीतर न जाने कैसा है नहीं जाने, कोई अत्यंत उच्च कोटि का महापुरुष परमहंस भी यदि चला जाए ना तो ठाकुर जी के माला को ऐसे छोड़ देंगे, अपवित्र हो जाएगा। ऐसी सब भावना नहीं रहनी चाहिए, वहां पर महापुरुषों के प्रति अवज्ञा का भाव है। वो तो ग्रहण कर लेंगे जो ठाकुर जी की माला हमको मिल गई, हमारा जीवन कृतार्थ हो गया, वो तो समझ लेंगे, किंतु तुम्हारा क्या हुआ। इसलिए साधारण लोगों में भी कहते हैं कि प्रहलाद महाराज इत्यादि उत्तम महाभागवत जो कहे गए, इसीलिए कि प्रत्येक जीवों के हृदय में अपने आराध्य देवों का दर्शन करते हैं, उस भाव को दर्शन करते हैं और आराध्य देव में सबका दर्शन करते हैं, ये महाभागवत है। इसलिए महाभागवत की पदवी बहुत ऊंची है। इतना तो नहीं होगा हम लोगों से उस कनिष्ठ अधिकारी में अनर्थ रहते हुए, तो अभी जहां तक हो सके जीवों को भी आदर दो, यानी कृष्ण अधिष्ठान। और भगवत भक्त जो हैं उनकी तो बात ही क्या, जो भगवान के निजी जन हैं और साधारण जन भी हैं, इन चारों के प्रति, भगवान के प्रति अर्थात शिव विग्रह के प्रति, नाम के प्रति, वैष्णवों के प्रति और साधारणों के प्रति भी कोई अपराध, किसी को अपने लिए किसी को उद्वेग मत दो। यदि उद्वेग दिया अपने लिए, अपने सुख के लिए दूसरों को उद्वेग दिया तो ये भजन नहीं हो सकता। इसलिए बड़े बड़े महात्माओं को देखा जाता है किसी की सेवा किसी प्रकार के भी ग्रहण नहीं करते, अपना सब काम अपने आप करते हैं, दूसरों की अंत तक सेवा करते हैं और अपने को समझने नहीं देते जो हम उत्तम भागवत हैं। यदि वैष्णव होना है और अपने भजन का प्रातः काल करना है तो इन अनर्थों को दूर करेंगे। ये होता है हृदय की दुर्बलता से और ये सब होता है प्रतिष्ठा के द्वारा। इसके संबंध में अभी बतलाएंगे श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी। हृदय दौर्बल्य कैसे होता है, तुच्छ वस्तुओं के प्रति आसक्ति, तुच्छ आसक्ति कुटी नाटी मात्सर्य अप्रतिष्ठिता हृदय दौर्बल्यम बुधई स्वसज्जने गेयं किल चतुर्विदः किल चतुर्विदः। पंडित लोग ऐसा कहा करते हैं, बुद्धिमान लोग भजन विषय में जो अभिज्ञ हैं, जानने वाले चतुर, भजन चतुर, वो कहते हैं कि हृदय दुर्बलता चार प्रकार की, हृदय दुर्बलता चार प्रकार है। कौन? कृष्ण के छोड़ करके, भगवत भक्ति को छोड़ करके किसी भी दूसरी वस्तुओं में आसक्ति रखना, चाहे देह हो चाहे दैहिक हो या देह संबंधी हो, परिवार संबंधी हो, जगत संबंधी कोई भी चीज हो, कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त और कहीं भी आसक्ति न रहे। कुटी नाटी जितने कुसंग इत्यादि हैं, कु नाम की जितनी चीजें हैं और ना निषेधात्मक जितनी वस्तुएं हैं, भगवान का स्मरण करना ही प्रधान विधि है और भगवान को विस्मरण करना ही प्रधान निषेध है। इसी के अंदर में जितनी भी विधियां और निषेध हैं सब इसके अंतर्गत में है। इसलिए मूल विधि और निषेध समझ करके कुटी नाटी दूर करना चाहिए, अर्थात कपटता। भगवत भक्ति के अतिरिक्त कुछ भी चाहने का नाम कपटता है। धर्म प्रोज्जित कई तो अत्र परमो निर्मत सरानन, तो जो निर्मत्सर संत हैं वो किसी, उनके हृदय में कोई कपटता नहीं है। भागवत में वैसी कपटता का कोई वर्णन ही नहीं किया गया, अर्थ धर्म काम मोक्ष इत्यादि सब कुछ, जिसमें मोक्ष प्रधान कपटता है, मोक्ष की इच्छा कपटता। और भगवत भक्ति में एक हृदय दुर्बलता है मात्सर्य। मात्सर्य माने किसी का वैभव देखकर, किसी का गुण देख करके मन ही मन जलना। कारो गुण देखे, कारो कोनो भालू देखे, हृदय मध्य तहां प्रति एक द्वेष भाव जन्मे जाए, ये हे मत्सर्य। काम क्रोध लोभ मद मोह पर्यंत भगवान ने सेवाते लागते पारे, किंतु यही मात्सर्य कोनो समय ते भगवत सेवाते लागते। এই জন্য বৈষ্ণবগণের এই মৎসত্তাকে সব প্রকারে ত্যাগ করবার চেষ্টা করা উচিত হৃদয়ের মধ্যে। এরই নাম হচ্ছে সাধন, যাতে এই মৎসত্তা ইত্যাদি এইসবগুলি দূর হয়ে যায়। এই দূর হয়ে গেলে ভগবত ভক্তি নিজে থেকে ওখানেতে প্রকটিত হয়ে যাবেন। অর্থাৎ পরশ্রী কাতরতা, অন্য লোকের শ্রী দেখে খুব কাতর হয়ে যায়। আর প্রতিষ্ঠাশা, সকলে থেকে শেষে বললেন প্রতিষ্ঠাতা, প্রতিষ্ঠাশা, সব কিছু ছুটে যাবে, ঘর বার স্ত্রী পুত্র পরিবার সব কিছু ছেড়ে দেওয়া সহজ। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠাশা ওই ভাব অবস্থা না হওয়া আসা পর্যন্ত কোনো না কোনো রূপেতে গন্ধ থাকবে, আর এই জন্যই বৈষ্ণব অপরাধ হয়ে যায়, নাম অপরাধ হয়ে যায়, সেবা অপরাধ হয়ে যায়। এই জন্য এই প্রতিষ্ঠাশাকে কথম সাধু প্রেমা সুচিরেতন্ননুমন, যখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠাশা আসবে, আমিও বলছি বটে, কিন্তু এই প্রতিষ্ঠাকে দূর করা ভারী কঠিন। একটু কেউ অপমান কিছু করে দে, মহারাজ আপনি উপরে বসে পাঠ করছেন, একটু নিচে না নেবে একটু পাঠ করুন না, দেখুন যে সে মনটা কিরকম হয়ে খারাপ হয়ে যাবে। বিশেষ করে এমন প্রতিষ্ঠা আসা যে কোনো কোনো সময়ে শ্রেষ্ঠ যে বৈষ্ণবগণ আছে সব প্রকারে আমার থেকে, কিন্তু তাহাকেও প্রতিষ্ঠা দিতে পারি না। আপনার দেবেন্দ্রকে জানেন, ইন্দ্র দেবতাদের সঙ্গে অসুরের সঙ্গে যুদ্ধের মধ্যে ওই অসুরা পরাজিত হল, সমস্ত দেবতারা মিলে ইন্দ্রকে অভিনন্দন করছে, সমস্ত দেবতা লোক মিল করকে ইন্দ্রকে অভিনন্দন কর রহে হ্যাঁ, উনকো বড়া সিংহাসন আসন পর বেঠা করকে ফুলকে গজরোঁ সে লাভে বড়ে বড়ে মোটে মোটে সব, আর ইন্দ্র মহারাজ কি জয় হো কর রহে হ্যাঁ। ইতনে মে বৃহস্পতি জি উধর সে আ রহে থে, দেখা জি সে ইনকা সম্মান হো রহা হ্যাঁ, উনকো কুছ সম্মান সে লেনা হ্যায় না দেনা, ও আ রহে থে। ইন্দ্র নে কিন্তু দেখা, ইন্দ্র কে গুরু হ্যাঁ বৃহস্পতি, কিন্তু দেখা যে হমারে গুরুজি আ রহে হ্যাঁ, যদি সভা মে না আতে তো বহুত আচ্ছা থা, হে ভগবান ইয়ে মত আয়ে, ইয়ে আয়েঙ্গে তো ইয়ে যো হমকো প্রতিষ্ঠা মিল রহি আব সব লোক উনকো দেঙ্গে, হমকো কোই প্রতিষ্ঠা দেগা নাহি, ইয়ে যাহাঁ উনকে অন্দর মে ভাবনা আই বস গুরুজি সমঝ লিয়ে আর ফির ওহীঁ সে লৌট গে, আয়ে হি নাহি। দেতা অসুরো কো পতা লগা, जैसे आज उन्होंने गुरु जी की अवज्ञा की है, उनके अंदर में भावना आई, आज ही आक्रमण करो, अब बस झट आक्रमण किया और उनको वहां से स्वर्ग से उनको च्युत कर दिया गया। भागते भागते ने कहां भागे, और उससे भी नहीं हुआ तो शुकर जन्म लेना पड़ा और शुकरियों के साथ में रमण करने लगे, वो तो ब्रह्मा जी की कृपा ऐसा हुआ, उन्होंने प्रोक्षण कर करके और अधिकारी के देवता हैं इसलिए फिर कृपा करके कुछ दिनों के बाद में भोग भोगा करके फिर स्वर्ग में उनको लाया। तो साधारण आदमी की तो बात क्या, इसलिए प्रतिष्ठा की आशा सब कुछ छोड़ा जा सकता है, सकत कुछ छेड़ते परी, किंतु प्रतिष्ठा रास्ता सहजे छड़ा जाए ना, इस जन इटा के खूब सावधानी पूर्वक वर्जन करवार चेष्टा करा। विशेष कर आजकल अबर बेसि बोलने अनेक বেশি হয়ে মানে প্রতিষ্ঠা আসার জন্য সব কিছু এমনকি বৈষ্ণবতা ইত্যাদি সবই কিছু আমরা প্রত্যাগ করে দিই। শিষ্য করার এত প্রতিষ্ঠা, বিশেষ করে কলিকালেতে কোনো যোগ্যতা না থাকলেও শিষ্য করবার খুব ঝোঁক, সব দুর্গুণ তাহার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও অনেকে এইসবগুলি লালসা বর্জন করতে পারে। এমনকি রূপ গোস্বামী এটা লিখেছেন, বহু শিষ্য এইসবগুলি করবে না, তথাপি কে শুনাবে? অযোগ্য শিষ্য করে দিয়ে আমরা পতনেতে যাচ্ছি, একটা এমনই কোনো ভজনেতে রুচি নাই, তথাপি এসব যোগ্য ব্যক্তি করে, ওরা আদরণীয়, ওদের পাতপঙ্গে ধরলি মস্তকেতে। কিন্তু আজকাল এইরকমভাবে তো সবগুলি চলছে, যাতে অনর্থগ্রস্ত জীব এই গুরু কাজের মধ্যে হাত দিয়ে আর চৌপট করছে। কৃষ্ণেতর বিষয়ে আসক্তি কুটিনাটি পরদ্রোহ প্রতিষ্ঠাদি প্রতিষ্ঠাসা এই চারিটি হৃদয় দরব বললে বলি শাস্ত্রে নির্ধারিল ছয় ঋপু ছয় উর্মি উহাতে জন্মিল। এই ছয় চারটি যে প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি অনর্থ হৃদয় দুর্বলতার জন্য, কাম ক্রোধ লো মদ মোহ মাৎসর্য এগুলি উর্মি, উর্মি মানে ওকে তরঙ্গটাকে বাড়ায়, ওই চারটা না, ওই চারটাকে বাড়ায় কোনটা? এই কাম ক্রোধ ওর মধ্যে এই প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি এই চারটা থাকলেই ও অরানে সেই চার ওর আকারকে উসকে ফিট কর দেবে, বাড়াবে, ওটাকে বাড়িয়ে দেয়। তার মধ্যে কাম ক্রোধ লো মদ মোহ মাৎসর্য কুটিনাটি সব তার মধ্যে এসে যায়, এই একটি প্রতিষ্ঠার জন্য। এই জন্য সাধুগণ যারা হরিনাম করবেন, ভগবানের ভক্তি করতে এসেছেন, এখন ওই নিঃশান্ত লীলাটা নিঃশান্ত ভাবটা গিয়েছে, অর্থাৎ শ্রদ্ধাটা এসেছে, আর এই প্রাতকাল হওয়ার সূর্য উদিত হওয়ার মানে অভি নাম সূর্য ভক্তি সূর্য অভি আসবে, এর মধ্যেই যদি এইগুলি থেকে গেল তাহলে আর প্রভাত কোনোদিন হবে না, প্রাতকাল হবে না। এই জন্য বুদ্ধিমান পুরুষ এই সবগুলিকে প্রত্যাগ করবে, এই হচ্ছে অনর্থ নিবৃত্তি। এই জন্য বলছেন শ্রীমদ ভাগবতে, ভয়ং দ্বিতীয়াদন্বেষতস্যাৎ ঈশাত অপেতস্য বিপর্যয় স্মৃতি তন্মায়া তো বুধ আভজে ততং ভক্তৈকজেষাং গুরুদেবতা। এটি একাদশ স্কন্ধে নিমি মহারাজের নবযোগীন্দ্র সম্বাদিত ব্যাস সুন্দর শ্লোক। গুরু মহারাজ এই অধ্যায়টাই কি গোবিন্দ ভুজ গুপ্তায়াং ব্যাস এই পাঠ করত, তার মধ্যে এটি ভয়ং দ্বিতীয়াদ অমন্যেষতস্যাৎ, ভগবান আমাদের অর্থ রীতে অর্থম ন যত প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত। এখনই ইনার সঙ্গে আমাদের কথা হচ্ছিল, বেশ সুন্দর প্রসঙ্গ এইসবগুলি চলতেছিল। তাই একটা সাধককে সাধক বলল গুরুর নিকটে, গুরুদেব আমার একটু সন্ন্যাস হয়ে গেলে ভালো, আমাকে একটু সন্ন্যাস দিয়ে দেন। গুরুদেব তাকে বললেন, শুনো শুনো, সন্ন্যাসটা কার? সন্ন্যাসটা এই মাটিটা হবে না আত্মার হবে? কার সন্ন্যাসটা হবে? শরীরে সন্ন্যাস আছে কোথাও? আর যে মাটি যে আত্মা আছে ওর সন্ন্যাসের কোথাও কোথাও আছে? যদি আমাদের শাস্ত্রজ্ঞানীতে এই যে বিধি আছে দণ্ড সন্ন্যাস ইত্যাদি উপনিষদগুলি ভর্তি আছে, কিন্তু কার যেন সন্ন্যাস? সন্ন্যাসটা কার, আত্মার সন্ন্যাস নাকি শরীরের সন্ন্যাস? এইসবগুলি গভীর বিচার নিয়ে এই মহাজন মহাজনের গণের ছোট ছোট কথাতে অত দার্শনিক বিচার থাকে। গুরু মহারাজ বলতেন যে টেনেতে টেনে মানে একটা বাঁশের কঞ্চিতে টেনে মানে কাপড় লাপতে দিয়ে, এইটা কি সন্ন্যাস? আমাদের গুরু মহারাজ বলছেন যে আমাকে এইটা বলেছিলেন বংশীদাস বাবাজি, আমি তাহার কিছু বুঝতে পারি নাই, ওর তিন চার পাঁচ বছরে ছ বছর পরে তারপরে যে বুঝলাম যে সে এর অর্থ তাৎপর্য। এই মহাপুরুষগণে এই একটা বলে দিলেন কথা আর বুঝতে, আমি মনে করতাম যে আমার মতন দার্শনিক ব্যক্তি না, ধন্য করে তিনি বলছেন গুরুদেব, যে আমি বুঝতে পারিনি, মানে আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন। এই জন্য এই সবগুলি ছাড়া যায় এরই নাম যথার্থ সন্ন্যাস। কায় মনে বাক্যেতে যত অনর্থগুলিকে প্রত্যাগ করে দিয়ে যথার্থভাবে ভগৎ ভজন মধ্যে আমি প্রবৃত্ত হয়ে যাই। মানে এইটা হচ্ছে বিশেষ রূপে কৃষ্ণেতে অনুরাগ হলে বিষয়ের প্রতি বিরাগ, এরই নাম তো সন্ন্যাস। এই জন্য গীতাতেও বলেছেন এই সবগুলি বিষয়ে, এই জন্য বলছেন ভয়ং দ্বিতীয়া, অন্য কোনো বিষয়েতে অনুরাগ হবে না, অভিনিবেশ হবে না। অভিনিবেশ মানে আসক্তি, আসক্তি নেই হবে। ঈশা তপে তস্য বিপর্যয় স্মৃতি, যখনই অভিনিবেশ হবে তখন যবি আবেশ হোগা দূসরি বস্তু মে, ভগবান কি মায়াশক্তি পহলে আপনে স্বরূপ সে উসকে স্বরূপ কো ঢক দেগি, আবরণাত্মিকা শক্তি মায়াশক্তি, আর বিচ্ছেপাত্মিকা দ্বারা দূর সংসার মে ভেজ দে, ফেঁক দেগি, পাঠিয়ে দিবে, ফেলে দিবে। আর কোটি জন্ম আর ঘুরতে থাকো জন্ম জন্মান্তর, বুদ্ধি বিপর্যয় হয়ে যায়, তন্মায়া বুধ আভজে। এই জন্য বুধ মানে যারা বুদ্ধিমান ব্যক্তি, যাদের সংস্কার হয়েছে বৈষ্ণব সঙ্গ ইত্যাদি হয়েছে, এরকমের বুদ্ধিমান আভজে তং তাহার ভজন করবে। কিরকমের ভজন করে? তং মানে কৃষ্ণকে ভজন করবে, কিন্তু কিরকম ভজন করবে? গুরুদেব আত্মা, গুরুদেবকে অত্যন্ত প্রিয় জ্ঞান করে, প্রিয় জ্ঞানে তাহার আনুগত্যতে ভজন করবে, তাহার নির্দেশ অনুসারে, নাই তো ভগবত ভজন হবে না। এই জন্য এই সবগুলি বিচার করে যদি আমরা চলি তাহলে ধীরে 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 আমাদের নিশাটা অবসান হয়ে যাবে, আমার রাত দূর হয়ে যায়গি, অনর্থ দূর হওয়া মানে রাত দূর হবে, আর হোনে কে বাদ মে তব ধীরে 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 সূর্যোদয় হোনে কা সময় আয়েগা। ভক্তি বিনোদ ঠাকুর জি ইহি পর বহু সে বিষয় কি শ্লোকো কি অবতারণা কি, জেসে কিরকম আমরা অনর্থ দূর করতে পারবো, হরিনামকে অতিরিক্ত আর কই দূসরা, আর সাধু সঙ্গকে অতিরিক্ত আর দূসরা কই উপায় নেই অনর্থ দূর করলে কি। জিসকা সাধু সঙ্গ নেই হোগা, উসকে হরি কথা শ্রবণ নেই হোগা, তো ও দূর নেই হো সকতি হে মায়া। ইসলিয়ে অন্ত মে তিন চার যে শ্লোক হ্যাঁ উনকো উসকা তাৎপর্য মে বতলা রহা হুঁ। একম একান্তিনাং প্রায় কীর্তনম স্মরণম প্রভো কুর্বতাং পরম প্রীত্যা কৃত্তম অনন্যম ন রোচতে ভাবেন কেনচিত পৃষ্ঠ শ্রীমূর্তে অঙ্ঘ্রি সেবনে অস্যাদি এষাং স্বমন্ত্রেণ স্বরসেন এব তদ্বিধি ইত্যাদি বলছেন। এই সবগুলি ধীরে ধীরে দূর হবে, নামাপরাধ দূর হবে, সেবাপরাধ দূর হবে, তারপরে ধমাপরাধ ইত্যাদি সব দূর হবে, অন্য জীবের প্রতি সম্মানের বুদ্ধি হবে, বৈষ্ণবগণের প্রতি আদর হবে, এই সমস্ত ধীরে ধীরে দূর হতে লাগলো। অন্য যত পরিমাণেতে ভজন হবে তত পরিমাণেতে অনর্থ দূর হতে যাবে, নিষ্ঠা আসতে লাগবে, যত পরিমাণে নিষ্ঠা আসছে ওই পরিমাণেতে রুচিও বাড়তে চলে যাচ্ছে, ওই পরিমাণেতে আসক্তিও হতে চলে যাচ্ছে। এইগুলি হচ্ছে আমাদের সাধন। হ্যাঁ, ভগবত ভক্তির জন্য যে ভাব আসবে এটা ভগবত কৃপা এবং ভক্ত কৃপার উপর ছেড়ে দিতে হবে, ওটা দীনতাহীনতা ইত্যাদি যদি আসে প্রার্থনা হবে ওরা অনুগ্রহ করে দিয়ে এইসবগুলি দিয়ে দেবে, ওটা আমাদের হাতের না। এখন বলছেন যখন তাহাদের এইরকম অনর্থ ধীরে ধীরে দূর হতে লাগবে, যাব অনর্থ দূর ধীরে ধীরে হোনে লগ যায়গা, তো কৃষ্ণ মে একান্ত কি